मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 30 जनवरी 2020 है और आज के इस AFEIS के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों एक अच्छी बात कह लीजिए या खराब बात कह लीजिए कि आज करंट अफेयर्स के तहत यानी कि न्यूज़ के तहत मेरे पास कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना या महत्वपूर्ण समाचार नहीं है जिसके बारे में मैं आज आपसे बातें कर सकूं। तो चलिए आज के समय का इस्तेमाल हम लोग दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बातों के बारे में करते हैं। पहली बात तो यह है कि मुख्य विषय के तहत मैं आज आपसे चुनाव सुधार के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले मैंने आप सबके लिए 2-3 बहुत अच्छी चीजें तलाश कर रखी हैं। ऐसी चीजें बहुत कम आप यूं कह लीजिए कि अवसर मिलता है कि हम इन पर बात कर सकें। तो एक तो दोस्तों मैं आपको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इस एडिटोरियल कमेंट को पढ़िएगा और इस एडिटोरियल कमेंट की जो आखिरी लाइन है उसे ठीक पहले की लाइन मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। चाहे तो आप इसे अभी लिख ले या फिर जब आप न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आप इसे नोट कर लें। ये दैनिक भास्कर के एडिटोरियल कमेंट के बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगा। तो पहले आप मेरा वाक्य सुने। मेरा वाक्य है, इस्लामिक आतंकवाद और धूर वामपंथ के साथ होने से आतंक को नया आयाम मिलने का खतरा बढ़ गया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस्लामिक आतंकवाद और धूर वामपंथ के साथ होने से आतंक को नया आयाम मिलने का खतरा बढ़ गया है। ये एक वाक्य है। अब इसमें 2 पॉइंट है। पहला तो यह है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो आपके मेंस के सिलेबस में है और उस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सिक्योरिटी पर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां उन्होंने एक नई धारणा दी है कि कैसे आतंकवाद तो राष्ट्रीय सुरक्षा को एक खतरा पैदा करता है, तो यहां उन्होंने एक नया विचार दिया है। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पहली बार ही ऐसा है, अलग अलग तरीके से इस बात को दूसरे लोगों ने इससे पहले भी कहा है, लेकिन यहां बड़े खूबसूरत तरीके से कहा गया है कि भारत में इस्लामिक आतंकवाद और धूर वामपंथ के साथ होने से आतंक को एक नया आयाम मिलने का खतरा बढ़ गया, यानी कि जो आतंकवाद है वो एक नया रूप ले सकता है। यानी कि यह वाक्य आपके इस टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिविल सर्विस की गंभीरता पूर्वक ईमानदारी के साथ तैयारी करने वाला स्टूडेंट क्या करेगा, वो करेगा ये कि इस वाक्य को नोट कर लेगा, रिवाइज करेगा, याद कर लेगा और परीक्षा में जब उसे लिखने का अवसर आएगा तो लिख देगा। और डेफिनेटली यह वाक्य किसी भी एग्जामिनर को बहुत अच्छे से प्रभावित करने की ताकत रखता है। पहली बात। दूसरी बात मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सब इस वाक्य पर विचार करें और इसी वाक्य पर आप 200 शब्दों में उत्तर लिखिए। केवल आप इसे समझाइए। बस मान लीजिए कि मैंने ये प्रश्न दे दिया है और आपसे कह दिया कि इसे स्पष्ट करें, समझाने की कोशिश कीजिए और 200 शब्दों में। अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझा लेते हैं तो मान करके चलिए कि मुख्य परीक्षा की आपकी तैयारी लगभग लगभग हो गई है। आपको आंसर राइटिंग आती है, आपको अपने विषय की समझ है और मुख्य परीक्षा में आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। लेकिन अगर आपको इसका उत्तर लिखने में दिक्कत हो रही है, बहुत अच्छे से आप नहीं लिख पा रहे हैं, बार बार एक ही तथ्य को रिपीट कर रहे हैं या शुरुआत ही करने में आपको दिक्कत हो रही है, अगर इस तरह की परेशानियां आप महसूस कर रहे हों तो यह इस बात का प्रमाण है कि नहीं, अभी आपको बहुत अधिक तैयारी करने की जरूरत है। आपका दिमाग अभी इस लायक नहीं हुआ या कह लीजिए कि इतना फ्रैंक नहीं हुआ है कि वो तुरंत उसके बारे में सोचे, लिखना शुरू कर दे, जो लिखा जाना चाहिए उसके लिए आपको तथ्य प्रोवाइड कर दे अभी। यानी कि दिमाग को और ज्यादा मांझने, मजबूत करने की जरूरत है। इसे आप अपना एक प्रकार से लिटमस टेस्ट मान सकते हैं। मित्रों अब मैं आपको एक दूसरी बात बताने जा रहा हूं और इसके लिए भी मैं आपको दैनिक भास्कर के आज का एक आर्टिकल प्रोवाइड करने जा कर रहा हूं जो एनके सिंह जी का लिखा हुआ है। शहरी नक्सलवाद के बारे में हम लोग सुनते आए हैं, शहरी नक्सलवाद है ना। यहां मुझे इस आर्टिकल में एक बहुत अच्छा रेफरेंस मिल गया। वो रेफरेंस आपको चाहिए कि आप या तो नोट कर लें या फिर यह जब आर्टिकल आपको प्रेस क्लिपिंग्स में पढ़ने को मिलेगा तो वहां से आप नोट कर सकते हैं। यह शहरी नक्सलवाद की जो अवधारणा है वो कहां से आई, तो उसका एक रेफरेंस है और ये रेफरेंस बहुत अच्छा है। मेन एग्जामिनेशन की देखिए तैयारियां ऐसी ही होती हैं। सन 2004 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट में एम यानी कि माओवादी की 2004 में एक बैठक हुई थी और उस बैठक का जो विषय था वह था अर्बन पर्सपेक्टिव, आप कह सकते हैं कि नगरीय या शहरी अवधारणा, राइट। उसमें पहली बार ये बात कही गई कि बिना शहरों पर कब्जा किए नई माओवादी व्यवस्था लाना असंभव है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना शहरों पर कब्जा किए नई माओवादी व्यवस्था लाना असंभव है, ये बात उसमें कही गई। ये एक रेफरेंस है और अगर आप चाहें तो यहां फिर से आप इसका इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बिना शहरों पर कब्जा किए नई माओवादी व्यवस्था लाना संभव, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको भी एक्सप्लेन करके देखिए। तो दोस्तों ये दोनों ही एक नई चीजें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं और नए तरीके से आज के डेली ऑडियो लेक्चर में हम लोग बातें कर रहे हैं और ये अवसर हम लोगों ने इसलिए हासिल किया है क्योंकि आज कोई दूसरी घटना हमारे लिए नहीं है। आज आपको एक करंट कंटेंट के तहत जो विषय प्रोवाइड किया गया है वो नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की बाधाएं, उसे आप पढ़िए। उसमें दो बाधाओं का जिक्र किया गया है। एक तो यह है कि जब हम नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी और हम कृषि प्रधान देश हैं और जमीन हमारे यहाँ वैसे ही कम है, तो अब हमको अगर और जमीन की जरूरत पड़ेगी तो वो एक बाधा है। दूसरी जो है वो पर्यावरण को लेकर के है क्योंकि उसके बाद लिए अब तार खींचते हैं, हवा पवन ऊर्जा के लिए लगातार टर्बाइन चलते रहते हैं और उन टर्बाइन में जो पक्षी हैं वो उलझ जाते हैं, तो इस तरह की जो जैव विविधता है बायोडायवर्सिटी उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकट दिखाई दे रहा है। तो ये दो तथ्य हैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल में। मैं चाहूंगा कि आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इन दोनों तथ्यों को नोट भी कर लें, उसमें बाकायदे उदाहरण दे करके ये तथ्य बताए गए हैं। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, चुनाव सुधार। देखिए जब हम चुनाव सुधार की बात करते हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला तो यह है कि अगर भारत में भ्रष्टाचार को कम करना है तो इसकी जो शुरुआत है वो केवल चुनाव सुधार से ही हो सकती है, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, हमारे यहां नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वही सर्वे सर्वा होते हैं। जो रियल पावर है वो पॉलिटिकल लीडर के पास होती है, यानी कि जिसके पास विधान कानून बनाने की ताकत है, मैं उस रूप में ही कह रहा हूं, वही वास्तविक शक्तिशाली है जो कानून बना रहा है। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो तो फिर उन बने हुए कानूनों को लागू करते हैं, उसका पालन कराते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उनका काम केवल उसको एग्जीक्यूट करना रह जाता है। तो रियल जो मास्टर हैं वो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं। अब सवाल यह है कि जो पॉलिटिकल लीडर आते कैसे हैं, वो चुन करके आते हैं, चुनाव के जरिए आते हैं। तो अगर हमारी चुनावी पद्धति बेहतर होगी तो सीधी सी बात है कि जो पॉलिटिकल लीडर आएंगे वो बेहतर लोग आएंगे और जब बेहतर लोग आएंगे तो बेहतर कानून बनाएंगे और उसका प्रभाव फिर पूरे देश पर पड़ेगा। ये एक सिंपल सी थ्योरी है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। अब हमारे जब चुनाव सुधार की बात होती है तो आप पाएंगे कि दो उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। देखिए जब हम चुनाव सुधार की बात करते हैं तो उसमें दूसरे बहुत सी चीजें आ जाती हैं, है ना, कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए, लेकिन जो क्रक्स है जो बिल्कुल केंद्रीय बिंदु है वो दो हैं। पहली बात, और ये बहुत बड़ी भारत के लिए आप यूं कह लीजिए कि चैलेंज भी है, बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय चुनाव पद्धति के लिए कम से कम अब। पहला यह है कि हम कैसे चुनाव में धन की शक्ति को रोके, धन के प्रभाव को रोके। आप कह सकते हैं कि मैं इस विषय पर आज चर्चा क्यों कर रहा हूं, उसका कारण है मित्रों कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे जितने भी राजनीतिक दल थे, आपको मालूम है कि उन्हें चुनाव आयोग को अपने खर्चे के का रिपोर्ट, खर्चे की रिपोर्ट देनी पड़ती है कि इस चुनाव में हमने इतना खर्च किया। तो अभी अलग अलग पार्टियों ने अपने खर्चे के रिपोर्ट दिए हैं। इसमें जो दो पार्टियां हैं उनकी मैं खासकर चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टियां हैं, कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने 2019 के लोकसभा के चुनाव में जब हुए हैं तो टोटल 1264 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 1264 करोड़ रुपए, और उसकी वजह से उन्होंने 303 सीटें जीती। यानी कि अगर हम इसको रिजल्ट के आधार पर डिवाइड करें तो एक सीट को जीतने में उसे 4.17 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, यानी कि मोटे तौर पर 4 करोड़ रुपए, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे इसके बाद है कांग्रेस। कांग्रेस ने कुल 820 करोड़ रुपए खर्च किए और उसने 52 सीटें जीती, 52, और इस तरीके से पर सीट जो खर्चा आया है वह है 15 करोड़ 79 लाख रुपए, आप सोच करके देखिए, 15 करोड़, मोटे तौर पर 80 लाख रुपए एक सीट को जीतने में। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? क्या इससे यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि उम्मीदवार के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास अपना पैसा हो? यह बात अलग है। अब आप देखिए कि अब इसमें फिर एक आप रिक्तता देखिए, इसका आपको एक बनावटीपन ये दिखाई देगा कि चुनाव आयोग ने फिक्स किया हुआ है कि लोकसभा चुनाव में केवल 70 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं। 70 लाख रुपए, तो भैया यहां इतना इतना खर्च क्यों हो रहा है? लेकिन वहां एक फिर से लूप होल है ना, जिससे मैंने कहा कि रिक्तता देखिए। उसमें क्या है कि जो 70 लाख रुपए है ना, ये एक उम्मीदवार अपने फंड से खर्च कर सकता है, अपने उसके खाते में होगा। बाकी जो पार्टी है, पार्टी चाहे फिर कितना भी खर्च करे, उससे उसका कोई लेखा जोखा नहीं, उसके लिए प्रतिबंध नहीं है। यानी कि एक उम्मीदवार के पास कम से कम 70 लाख रुपए खर्च करने के लिए होना चाहिए, फिर पार्टियों के लिए इतना पैसा होना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात यह है, आप देखिए कि ये जो पार्टियां हैं, ये पैसा लेती कहां से है, हम ये नहीं पूछ सकते। देखिए, चुनावी बांड लेने का जो मामला है, ये ऑलरेडी अभी सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है, निर्णय देगी कि चुनावी बांड का जो मामला है ये किस तरह से सही है कि गलत है। तब होता क्या है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो धनी लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो चुनावी फंड में पैसा देते हैं और पैसा लेने के बाद फिर जब वो पार्टी जीत जाती है तो फिर उससे अपना काम करवाते हैं। बटने स्वाभाविक है कि आपको फिर उस पार्टी, उस जिसने आपको धन दिया है, उसको कुछ ना कुछ तो रिटर्न में देना पड़ेगा ना। तो इससे हमारी सरकार की नीतियां सीधे सीधे प्रभावित होती हैं। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में पैसे वालों का प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है। तो अब आप ये बताइए कि क्या यह डेमोक्रेसी है? सीधी सी बात है कि जो आदमी गरीब है वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा, तो खत्म हो गया ना। डेमोक्रेसी की जो रियल थ्योरी है, हम भारत के लोग, वो तो यहां गायब होती हुई दिखाई दे रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आप आरटीआई के तहत, सूचना के अधिकार के तहत, इन राजनीतिक दलों से ये पूछ भी नहीं सकते कि भैया आपको ये पैसा किस किस ने दिया है, आप बताइए। आप उनसे पूछ भी नहीं सकते, इन्होंने अपने आप को आरटीआई से अलग रखा हुआ है। तो इसको लेकर के लगातार बातें हो रही है, लगातार, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। राजनीतिक दल जब इकट्ठे होते हैं, जब मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता है, तो तब भी कभी 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 भी चुनाव सुधार के बारे में बात नहीं हुई है, जैसा कि मुझे मालूम है और पढ़ने को मिलता है अखबारों में, आपके आर्टिकल्स में। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रशासनिक सुधार और ये वो सब बातें होती हैं, तो लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, तो क्या चुनाव सुधार भी अपने आप में प्रशासनिक सुधार का हिस्सा नहीं होना चाहिए? कभी इसके बारे में बात नहीं होगी। इसी तरह से जो दूसरा मामला है वो अपराधीकरण का मामला है। और देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है, कुछ दिनों पहले कहा है कि आप हमें एक महीने में बताइए कि आप चुनाव में सुधार करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग से मांगा है, देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या करता है। जबकि चुनाव आयोग, दोस्तों ठीक है कि राजनीतिक दल इसके बारे में कोई एक्ट नहीं लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को इस बारे में असीमित अधिकार दे रखे हैं। संविधान के हमारे अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग, चुनाव अच्छे तरीके से हो, संविधान सम्मत हो, इसके लिए कोई भी कदम उठा सकता है। चुनाव आयोग को इतने अधिकार हैं और इन अधिकारों का सर्वोत्तम जो इस्तेमाल किया है वो हमारे चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने किया है। और टीएन शेषन का नाम इस मायने में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, जो कुछ दिनों पहले ही इस दुनिया से चले गए हैं। और मेरा सौभाग्य था कि मुझे उन्हें देखने का और उनके साथ मीटिंग में भाग लेने का मौका मिला। वो तो संविधान निर्माताओं ने व्यवस्थाएं तो दी हुई हैं, अब सवाल यह है कि उन व्यवस्थाओं को लागू करने वाली जो हमारी संस्थाएं हैं वो कितना कर पाती हैं, क्यों नहीं कर पा रही हैं, वो एक अलग मुद्दा है। तो दोस्तों, खासकर इस बिंदु पर मुझे आप लोगों से विशेष रूप से कुछ बातें करनी थी और आज ऐसा अवसर आ गया था कि इस पर बात की जा सकती है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं। तो मुख्य विषय के बारे में दोस्तों बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उनमें से कुछ मित्रों के नाम हैं: मनमोहन चक्रवर्ती, मोहम्मद तैयब, अभिषेक श्रीवास्तव, खेमकरण भरतपुर राजस्थान से और सुयश तिर्की। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।